Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
खींच रहा था वो वन की भूमि खींच रही थी, एकांत उनको खींच रहा था। वैराग्य भी खींचता है और अनेकों प्रलोभनों को देख के भी वैराग्य में आदमी को बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती हैं, नानार्थ से अनेक प्रयोजन मालूम पड़ते हैं वैराग्य में। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु, एक त्याग के द्वारा ही अमृत रूप शांति या परमात्मा को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नानार्थी सीनिता, और ये दुनिया के प्रिय पदार्थ भी हमें खींचते हैं, ये भी हमें पतन की ओर ले जाते हैं, खींचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें जो साधु भवती श्रेय आदा आद दान से साधुर भवती, इन दोनों मार्गों में जो श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेय मार्ग, उसको ग्रहण कर व्यक्ति साधु हो जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, सचमुच इस निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति है मतलब साधु हो जाता है, विरक्त हो जाता है, दयालु हो जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी दैवी संपदाएं आने लगती हैं, दया करुणा। और जो प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है उसके जीवन में ही यते संपूर्ण ऊर्जा का क्षरण हो जाता है। इस भोग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में जलन, घृणा, ईर्षा, द्वेष, प्रतिशोध, बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं और अंततः वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ही यते माने वो नष्ट हो जाता है। आज बालक नचिकेता को आचार्य यम यही कहना चाहते, दो मार्ग हैं तुम्हारे सामने, एक संसार का मार्ग और दूसरा परमार्थ का मार्ग, एक योग मार्ग और दूसरा भोग का मार्ग, और इन दोनों में से तुम वैराग्य के मार्ग का चयन कर रहे हो, तुम छोड़ने के मार्ग का चयन कर रहे हो, ज्ञान के मार्ग का चयन कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये दो मार्ग रखकर बालक नचिकेता के वैराग्य का भाव प्रकट करते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अर्जुन का भी बड़ा सुंदर जीवन आपके सामने है, एक तरफ भगवान है, दूसरे तरफ यादवी सेना। वहां भगवान ने एक बहुत अद्भुत चीज प्रस्तुत की है, वो प्रसंग बहुत अद्भुत है, बहुत प्रतीकात्मक है। भगवान सो रहे हैं, अर्जुन भी गए हैं वहां, दुर्योधन भी गए हैं, पहले दुर्योधन गया हुआ है। उन्होंने देखा कि भगवान सो रहे हैं, बात तो सत्य है, कभी भगवान सोते नहीं है। भगवान और सोना, सोते हुए जीवात्मा का नाम प्राज्ञ है। हमारी तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था अभिमानी जीवात्मा को विश्व बोलते हैं, स्वप्न अवस्था अभिमानी जीवात्मा को तेजस बोलते हैं, और नींद की अभिमानी जीवात्मा का नाम प्राज्ञ है। नाम भी बड़े सार्थक हैं, विश्व से जुड़ जाता है आदमी, संपूर्ण दुनिया के पदार्थों के साथ जुड़ जाता है व्यक्ति जागृत अवस्था में, इसलिए इसका नाम रखा विश्व। व्यक्ति का ही नाम है, विश्व के साथ जुड़ता है, इसलिए विश्व है, वो विश्व कहलाता है। और स्वप्न में बहुत सारी सृष्टि का निर्माण करता है, बहुत सारे पदार्थों का निर्माण करता है, और वो सारी चीजें पैदा करता है अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इसलिए श्रुति कहती है मन एव, बहुत सूक्ष्म है वो चीजें, इसलिए उसका नाम रखा गया तेजस। और सोने वाले, नींद में जाने वाले, नींद का अनुभव करने वाले जीवात्मा का नाम रखा प्राग। ये नाम तो बहुत रहस्यपूर्ण है। प्राज्ञ का अर्थ होता है, प्राज्ञ माने ज्ञानी नहीं है, प्राज्ञ का अर्थ ज्ञानी नहीं है, प्राज्ञ माने अज्ञानी। प्र प्लस अज्ञ, जो बहुत अच्छी प्रकार से अज्ञानी है, जो बहुत गहरे अज्ञान में प्रवेश कर चुका उसको अज्ञानी बोलते हैं। आप जाग रहे हैं इस समय भी अज्ञानी हैं, इस समय सत्संग में बैठे हैं उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आप जानते नहीं हैं। आप जग रहे हैं लेकिन आपको नहीं मालूम आपके पीछे, आपके कुर्सी पर आपके पीछे कौन बैठा है आपको नहीं मालूम, दूसरे के पर्स में क्या रखा है ये नहीं मालूम। बहुत सारी चीजें हैं जो अज्ञात हैं। स्वप्न अवस्था भी अज्ञान की अवस्था है, वहां पर भी अज्ञान है, लेकिन जागृति और स्वप्न की अपेक्षा नींद में जो अज्ञान है बहुत गहरा, आप सो गए और उसी समय आपके शरीर से सांप भी गुजर जाए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप डरते हैं छिपकली से, क्या पता कितने बार हमारे शरीर से होकर छिपकली गुजरी होगी, लेकिन कोई भय नहीं है क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान गहरा अज्ञान। इसलिए सुषुप्त अवस्था अभिमानी जीवात्मा को प्राज्ञ बोला है, बहुत गहरे अज्ञान वाला। कितना अज्ञानी आदमी अपना भी नाम नहीं जानता है, अपने शरीर को भी नहीं जानता है, वहां कमरे में जो भी चीजें हो रही वो भी नहीं जानता है। ये जीव का स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव नहीं है सोना, ये अज्ञान जन्य है, नींद अज्ञान जन्य है, अज्ञान का कार्य है, अज्ञान का स्वभाव है, गहरा अज्ञान है, ये जीव का स्वभाव। भगवान सोते नहीं, भगवान से कभी कोई चीज अज्ञात नहीं है, भगवान का तो नित्य ज्ञान है। ध्यान देंगे भगवान का ज्ञान नित्य है और हमारा जो ज्ञान है अनित्य है, कभी पैदा होता है कभी मिट जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। इसलिए हमारी जानने की प्रक्रिया ये बहुत क्षणिक है। परमात्मा का ज्ञान नित्य है इसलिए भगवान कभी सोते नहीं, लेकिन अज्ञानी के लिए सो रहे हैं। जैसे दुर्योधन वहां प्रवेश करता है मालूम पड़ता है कि भगवान सो रहे हैं, भगवान अज्ञान में मालूम पड़ रहे हैं, उसके लिए भगवान जगे नहीं है, भगवान सो रहे हैं। और भगवान को जगाना ही तो है, और क्या करना है। आत्मा जब तक सोई है तभी तक ये संसार दिखाती है, और जैसे आत्मा जगती है सबसे पहले आत्मा क्या करती है, हमारे अज्ञान को खा जाती है, अज्ञान जन्य संपूर्ण कामादि विकारों को खा जाती है। दुर्योधन देखता है भगवान सो रहे हैं और कहां बैठता है फिर वो, आप सिर के पास मत कहो, सिर पर बैठ जाता है वो आप बोलते हो ना, अरे ये तो सिर पर बैठा है हमारे, आप बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे सिर पर बैठी रहती है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। आज भगवान के सिर पर बैठ गया जाके, और कोई जगह नहीं थी क्या वहां, ये तो द्वारका की बात है, द्वारकाधीश भगवान, वहां महलों की कमी नहीं और वो बड़े बड़े महल हैं, प्रासाद हैं, प्रासाद वहां जगह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो जाके कहां बैठा? उसके बाद अर्जुन भी गए, अर्जुन ने देखा भगवान शयन कर रहे हैं, जहां दुर्योधन होगा वहां भगवान तो सोएंगे, ये तो अहंकार का प्रतीक है, दुर्योधन अज्ञान का प्रतीक है, और जहां अज्ञान की उपस्थिति हो, अहंकार की उपस्थिति हो, वहां परमात्मा का सोना अनिवार्य, भगवान सो रहे हैं। शायद अर्जुन पहले जाते और दुर्योधन बाद में जाता तो भगवान सोते हुए मिलते कि जगते हुए मिलते? भगवान जगते हुए मिलते, लेकिन गड़बड़ हुआ, जो अज्ञान में है, जो अहंकार के गहरी नींद में है, जो प्रतिशोध जलन की गहरी नींद में है, वो व्यक्ति परमात्मा के पास गया है। अब संभावना कम है कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से परमात्मा जग जाए, संभावना तो यही बनती है कि थोड़े जगे हुए परमात्मा भी गहरी नींद में सो जाए। जब अर्जुन गया वहां, अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे हैं, लेकिन भगवान ज्यादा नहीं सो रहे हैं, जैसे अर्जुन गया बैठा भी नहीं, भगवान उठ के बैठ गए। ओह, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान का भक्त जग रहा हो और भगवान सो जाए? भगवान उठ के बैठ गए और भगवान और अर्जुन में बातचीत होने लगी, संवाद होने लगा। अब प्रभु अज्ञात नहीं, प्रभु ज्ञात हो गए, बहुत प्रसन्नता आजाद, लेकिन बेचैन है दुर्योधन, जो पहले आया था वो पीछे हो गया। कोई सिरहाने पर बैठता हो ना तो वो पीछे हो जाता है, आज दुर्योधन पीछे हो गया, अर्जुन आगे, क्योंकि वो आके चरणों में बैठा था। ये चरणों में बैठना परम विनम्रता है, चरणों में सभी नहीं बैठते हैं। जो अहंकारी आदमी होता हमेशा सिर पर बैठता है, और जो विनम्र होता हमेशा चरणों में बैठता है, चरणों में स्थान खोजता है, विनम्रता है, समर्पण है। अर्जुन में ऐसी गहरी विनम्रता है, चाहे तो भी अर्जुन भगवान के सिर पर नहीं बैठ सकता है, हमेशा सामने हाथ जोड़ते। जो कामचोर चेला होता है ना, वो पीछे बैठता है, गुरु की नजर न पड़ जाए, ये काम न बताते हो। आज जो समर्पित होगा वो सामने बैठेगा, नजर में बैठेगा, इशारे को समझने के लिए। जैसे अर्जुन सामने भगवान के, घबरा गया दुर्योधन, अरे बोले मैं तो पहले आया हूं, और बातचीत अर्जुन के साथ, मुझे लगता कि उन्होंने पीछे से आवाज लगा दी होगी, बोले मैं भी आ गया हूं। अरे प्रभु भगवान मैं भी आ गया हूं, भगवान ने कहा आगे आ जाओ आगे। भगवान ने कहा कि भैया जो बहिर्मुख होता है ना, सम्मुख होता है, वो मेरे को पाता है, और जो विमुख होता है वो मेरे को प्राप्त नहीं करता है। परमात्मा को पाने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, परमात्मा को पाने के लिए सम्मुखता चाहिए, विमुखता नहीं। भगवान ने कहा सामने आओ, सम्मुख हो जाओ। सामने आया, सारी परिस्थितियां भगवान के सामने रख दी गई। भगवान ने कहा दोनों का आगमन कैसे हुआ? दोनों ने कहा हम तो आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं, महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें मदद चाहते हैं आपसे। बड़ी मजेदार बात, दोनों आए हैं भगवान से मदद मांगने के लिए और दोनों आपस में शत्रु हैं। बहुत गहरी बात है यहां, एक बहुत प्रतीकात्मक संदेश मिलता है। भगवान के लिए दोनों बराबर हैं, बात भी सत्य है, भगवान भगवान है, भगवान के लिए क्या अपना और क्या पराया। आज भगवान के पास दो शत्रु आपस में जो अभी अभी लड़ने के लिए तैयार हैं, अभी तुरंत युद्ध होने वाला है और वो दोनों मांग रहे हैं। हमारे जैसे आदमी होता तो संभावनाएं कम थी कि दोनों साथ आ जाए, पहले ही निर्णय हो चुका होता कि हम किस पक्ष के हैं। और आज भगवान संदेश दे रहे हैं, भगवान ऐसा ही होता है। भगवान ने बोला भी है, पंडिता समदर्शिन निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। बोले ब्रह्म कैसा होता है? बोले निर्दोष। परमात्मा कैसे होते हैं? बोले निर्दोष। निर्दोषत्वम ये डेफिनेशन है भगवान की परिभाषा। भगवान ने भगवान की परिभाषा कर दी। बोले भगवान कैसे होते हैं? बोले निर्दोषम। उसमें दोष नहीं होता है, उसमें त्रिगुणात्मकता नहीं होती है, निर्दोषम। अब आप जो भी दोष समझते हैं उन दोषों से ऊपर है निर्दोषम। और बड़े दूसरी परिभाषा और कुछ समझने वाली, समम दूसरी परिभाषा दी भगवान ने। भगवान ने कहा भगवान वो है जो समत्व है, समत्व भगवान की दूसरी परिभाषा है, समत्वम। तस्मात ब्रह्मणिते स्थिता। भगवान ने कहा उसको आप निर्दोष कहो, सम कहो अथवा ब्रह्म कहो, ये पर्यायवाची हैं शब्द। बोले ज्ञानी पुरुष इसी में रहता है। बोले किस में? ब्रह्म में। और ब्रह्म कैसे हैं? बोले सम है। वो बोले निर्दोष है। साक्षात भगवान ही कह रहे हैं, परमात्मा का रूप है, स्वभाव है समता। एक मां के लिए चाहे पांच बच्चे हो चाहे दस, कोई भेद नहीं, बराबर। वैसे भगवान के लिए कोई भेद नहीं नारायण, न अर्जुन का भेद है और न दुर्योधन का भेद, दोनों समान है। आज भगवान ने दिखा दिया कि मेरे लिए दोनों समान, लेकिन अंतर भगवान की तरफ नहीं, अंतर ग्रहता की तरफ से है। आप भगवान को कितना ग्रहण कर, सूर्य के दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सूर्य सबके लिए बराबर। एक चोर आदमी चोरी करने के लिए जाता है उसको भी प्रकाश देता है सूर्य, और कोई गीता रामायण की पुस्तक पढ़ने लगता है तब भी सूर्य उसको प्रकाश देता है। सूर्य की दृष्टि से भेद नहीं है, लेकिन रिजल्ट में अंतर है, उसको ग्रहण करने वाले में अंतर है। वो ग्रहण करने वाले व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है। इसलिए भगवान ने दिखा दिया कि भैया मेरे लिए कोई भेद नहीं है, दोनों बराबर है, मांगो दोनों मांगो, क्या चाहिए? बोले युद्ध में मदद चाहिए, भगवान का दोनों को मिलेगी। और भगवान ने अद्भुत परीक्षण लिया महाराज, अद्भुत परीक्षा ली वहां भगवान ने। भगवान ने कहा कि मैं दोनों को बराबर हूं, लेकिन तुम दो तो बराबर नहीं हो, मेरे लिए तुम बराबर हो दोनों, लेकिन तुम दो तो बराबर नहीं हो, दोनों का स्वभाव अलग है। और तुम जब मेरे को ग्रहण करोगे तो तुम अपने स्वभाव के अनुसार, तुम मेरा चयन करोगे, तुम अपने स्वभाव के अनुसार करोगे, और तुम्हारे दोनों के स्वभाव में अंतर है, भेद है। भगवान ने कहा एक तरफ मैं और दूसरी तरफ यादवी सेना। अच्छा आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना, कोई तुलना है क्या? क्या भगवान यादवी सेना और भगवान दोनों बराबर हैं? भाई बंटवारा हो तो बराबर ना, आप दो हिस्से करोगे, आप दो हिस्से करके आप बोलोगे भैया इन दोनों में से एक ले लो, ये दोनों बराबर हैं। आप किसी को बांट रहे हैं तो दो हिस्से बराबर करोगे ना, भैया सोना है एक किलो तो आप आधा आधा किलो करो, बराबर है। लेकिन आप एक किलो सोना रख रहे हैं, एक किलो चांदी रख रहे हैं, बोल रहे देखो ये बराबर, एक किलो ये भी है, एक किलो ये भी है, और इन दोनों में से एक ले लो। भगवान का बंटवारा भी बड़ा मजेदार है। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी यादवी सेना है, बहुत प्रबल, जिसको हराना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े वीर हैं उसमें, बहुत प्रशिक्षित हैं। और दूसरी तरफ मैं, और भगवान ने यह भी बोला कि भाई लड़ूंगा नहीं, ध्यान देना भैया, मैं लड़ूंगा नहीं, हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब बराबरी होगी शायद। आज भगवान ऐसा क्यों बोले? भगवान कहना चाहते कि शायद बराबरी हो जाए। बोलते ना, हम दोनों लड़ेंगे, तुम शस्त्र से, हम निहत्ते लड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत कम है, हमारी ज्यादा है, तो तुम शस्त्र से लड़ो, हम ऐसे लड़ते हैं। आज भगवान संतुलन साधने की कोशिश कर रहे, दोनों की बराबरी की। भगवान ने कहा एक तरफ यादवी सेना सशस्त्र लड़ने वाली, और दूसरे तरफ मैं, यदि लड़ूंगा तो बराबरी नहीं होगी। भगवान ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। बोले क्या करोगे फिर? ज्यादा से ज्यादा तुमको मैं सलाह दूंगा, तुम पूछोगे तो मैं सलाह दूंगा। अब बोले जिसको जो चाहिए आप ले लो। अब वहां जो दुर्योधन है वो सोच रहा था कि पहले मैं मांगू, और अर्जुन भी सोच रहा था कि पहले मैं मांगू, दोनों के मन में है पहले मैं मांगू। कारण दुर्योधन सोच रहा था अर्जुन जब मांगेगा तो क्या मांगेगा, ये कृष्ण मांगेगा, ध्यान देना, अर्जुन मांगेगा तो कृष्ण नहीं मांगेगा, वो सेना मांगेगा, और सेना जब अर्जुन के पक्ष में चली जाएगी, अर्जुन के साथ चली जाएगी, तो मैं कृष्ण को लेके क्या करूंगा निठल्ले, मैं तो व्यर्थ, यहां आना ही मेरा व्यर्थ होगा, मैं तो इसको लेने से रहा। और अर्जुन के मन में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि है, सेना के प्रति नहीं। बैठे बैठे अर्जुन सोच रहे थे प्रभु मांगने का मौका हमको देना, क्योंकि ये यदि पहले मांगेगा तो तुमको ही मांगेगा, कितना बड़ा दृष्टि भेद है, कितना बड़ा दृष्टि भेद। आप अर्जुन के दृष्टि से देखेंगे आपको यादवी सेना कभी बड़ी नहीं मालूम पड़ेगी, भगवान बड़े मालूम पड़े, महत्वपूर्ण भगवान मालूम पड़े। इसलिए अर्जुन सोच रहा था भगवान को यदि पहले मांगा तो भगवान को मांगेगा दुर्योधन, और उसके बाद यादवी सेना को लेकर मैं क्या करूंगा, वापस चला जाऊं, वापस क्या, फिर लड़ना मुश्किल है, तब तो युद्ध समाप्त। यदि भगवान चले गए दुर्योधन के पक्ष में, बात भी सत्य है, नौबत युद्ध की आई इसीलिए है क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में भगवान नहीं है, इसीलिए तो आई, इसीलिए असत्य का पक्ष ले रहा है वो, और भगवान वो मांगे तो सत्य के पक्षपाती हो जाए। भगवान भी मजेदार, भगवान ने कहा मांगो, तुम मांगो, क्यों? अरे बोले तुम पहले दिखाई पड़े ना, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि पड़ी, भले ही तुम पहले आए दुर्योधन, लेकिन मेरे दृष्टि में तुम नहीं आए। और भगवान ने कहा ऐसे भी छोटा है, उम्र में छोटा है, छोटे को मांगने का अधिकार होता है, मांगो तुम, घबरा गया दुर्योधन। आपको तो मालूम है ये चयन है, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेम मार्ग, एक भोग का मार्ग दूसरा योग का मार्ग, एक विजय का मार्ग दूसरा पराजय का मार्ग है। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यादवी सेना दिखाई दे रही है, एक अक्षोहिणी सेना है, कम नहीं है वो, बहुत बड़ा संतुलन बिगाड़ सकती वो सेना। बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, बहुत बड़े वैराग्य की बात थी, एक तरफ भगवान है दूसरे तरफ यादवी, लेकिन बहुत प्रसन्नता से अर्जुन ने कहा प्रभु, बोले मैं आपका चयन करता हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। किसी ने प्रसन्न हुआ वो अर्जुन की बेवकूफी के ऊपर, वो सोच रहा था कि बड़ा बेवकूफ है, अवसर मिला विजय का, अवसर मिला यादवी सेना को लेने का, और इस बेवकूफ आदमी ने उस अवसर को गंवा दिया, सेना नहीं ली, कृष्ण को लिया, और वो भी निकम्मा, वो लड़ने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सारथी बनेगा अर्जुन। जाते समय दुर्योधन ने प्रणाम भी नहीं किया होगा, किया होगा मधु भाई? मुश्किल है, प्रणाम कौन करेगा? जहां विनम्रता होगी, निरहंकारिता होगी, उठ के चला गया, समझौता हो गया, मिल गई सहायता, लेना था मिल गई सहायता, जो चाहता मिला। भगवान ने कहा जो चाह लेके व्यक्ति मेरे पास आता है उसको वो चीज मिल जाती है। सेना चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया मिली, भगवान को चाह भगवान मिले। लेकिन भगवान ने पहले मांगने के लिए क्यों बोला? यदि दुर्योधन भी पहले मांगता तो क्या मांगता? सेना ही मांगता। और भगवान तो अर्जुन के पक्ष में आने वाले थे, उसके बाद भी भगवान ने अर्जुन को पहले मांगने के लिए क्यों कहा? ये भी एक बहुत रहस्य है। भगवान को मालूम है यदि दुर्योधन ने मांगा होता सेना पहले और भगवान अर्जुन के पक्ष में आ गए होते, तो भगवान का अर्जुन के पक्ष में आना यह अर्जुन का चयन होता कि दुर्योधन का चयन होता? अपने को क्या मालूम था, क्या मालूम पड़ता कि अर्जुन क्या चाहते हैं? चयन दो में होता है। भगवान दिखाना चाहते थे दुनिया को, दो चीजें सामने हैं, संसार और परमार्थ, योग और भोग। अर्जुन किसका चयन करता है, किसके भीतर की आकांक्षा क्या है? बस भगवान को ही दिखाना था, इसलिए भगवान ने कहा तुम दोनों में से एक मांगो। दो में से एक मांगा उन्होंने, ये श्रेय और प्रेय के मार्ग में से चयन था। ये अद्भुत वैराग्य की बात थी, ये भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की बात थी। बालक ने चिकिता के सामने आचार्य ने यही बात रखी, बोले बेटा दो मार्ग हैं, इन दोनों में से तुम किसका चयन करना चाहते हो? तुम तो प्रेय छोड़ के श्रेय का मार्ग चयन करना चाहते हो, परम वैराग्य की बात है। सामने होते हुए भी भोग का त्याग करना चाहते हो। आज प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर संघ है। अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सीधे बैठ जाए दो मिनट के लिए। ॐ नमः शिवाय। 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 शिवाय। ॐ
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।